तारीख 15 नवंबर दिन शुक्रवार। नमस्कार, भारत के साथ मैं हूँ मानसी दाश। आरसीईपी से बाहर हुआ भारत, लेकिन फिर भी इसके दरवाजे भारत के लिए रहेंगे खुले।
आरसीईपी के माध्यम से या फ्री ट्रेड के माध्यम से जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लाभ होता है, क्योंकि वे अपना माल पूरे दुनिया में बेच सकते हैं।
झारखंड सरकार से क्यों नाराज हैं आदिवासी, सुनवाएंगे रिपोर्ट।
भूमि अधिग्रहण बिल यहाँ के आदिवासियों के लिए एकदम खतरा है, उसको लाया। जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए जो सीएनटी एक्ट कानून बना है संशोधन करने का प्रयास किया।
महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से परेशान किसान।
बारिश के वास्ते हमारे नासिक जिले में बहुत नुकसान हो गए खेत का, और ये प्याज और अंगूर का।
हम भी आज ये प्रतिमा लेकर।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार नवीन नेगी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन के बाद भारत के लिए उड़ान भरने से पहले उन्होंने इस सम्मेलन को बहुत कामयाब बताया। ब्रिक्स देशों के राष्ट्राध्यक्षों को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि ब्रिक्स देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाया जाना चाहिए। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से भी मुलाकात की थी। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच आरसीईपी समझौते के बारे में बातचीत हुई थी। अमेरिका के लॉस एंजल्स स्थित एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई है। इस शूटिंग में दो छात्रों के मारे जाने की खबर है। कैलिफोर्निया पुलिस का कहना है कि वीडियो में गोलियां चलाते हुए एक संदिग्ध को देखा जा सकता है। उसने खुद को गोली मारने से पहले 5 अन्य छात्रों पर गोलियां चलाई। हमलावर की पहचान 15 वर्षीय एक एशियाई मूल के युवक के तौर पर हुई है। युवक का नाम नेथानील बरहो बताया जा रहा है। हमलावर युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस घटना पर अमेरिका के उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने दुख जताया है।
I spoke to President Trump not long ago, and he asked me to convey his deepest sympathies.
मैंने कुछ देर पहले राष्ट्रपति ट्रंप से बात की। उन्होंने पीड़ित परिवारों को अपनी संवेदनाएं पहुंचाने के लिए कहा है। मैंने लॉस एंजल्स के शेरिफ एलेक्स विनेलनोवा से भी बात की और उन्हें हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुझे इस घटना का बहुत दुख है। ये थे अमरीकी उपराष्ट्रपति माइक पेंस के शब्द। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के विजय दिवस को मनाने के लिए अगले साल मई में रूस आएंगे। पुतिन ने कहा कि रूस हमेशा अमरीका के साथ बातचीत के लिए तैयार रहा है। उन्होंने कहा कि वो यूक्रेन के संबंध को लेकर यूरोपीय देशों के साथ आगामी सम्मेलन में चर्चा करेंगे। अभी तक हमारे बीच किसी तरह की मुलाकात की योजना नहीं बनी है। मुझे लगता है कि 9 मई को मॉस्को में आयोजित होने वाले विजय दिवस के अवसर पर वो यहाँ आएंगे। हालांकि वो उस दौरान चुनाव में काफ़ी व्यस्त रहेंगे, लेकिन उनका यहाँ आना अच्छा रहेगा। अगर वो आते हैं तो हम निश्चित तौर पर मुलाकात करेंगे। ये थे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन में महाभियोग जांच की सुनवाई चल रही है। इस संबंध में वरिष्ठ डेमोक्रेट नेता नैन्सी पेलोसी ने बताया है कि बुधवार को हुई सुनवाई में राष्ट्रपति के खिलाफ रिश्वत लेने के सबूत पेश किए गए। उन्होंने इन सबूतों को इस बात से जोड़ा है जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी जो बाइडेन के खिलाफ जांच करने के लिए यूक्रेन पर दबाव बनाया था। ट्रंप पर आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूक्रेन से सैन्य मदद वापस लेने की धमकी दी थी। हालांकि ट्रंप लगातार इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। बोलीविया की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस की पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। बोलीविया में लंबे वक्त से विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। यहां इवो मोरालेस के हजारों समर्थकों ने नई सरकार के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध मार्च निकाला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा सरकार ने इवो मोरालेस का तख्ता पलट किया है। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोलीविया की स्थिति को बहुत खराब बता चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटारेस ने बोलीविया में सभी पक्षों से शांति बनाए रखने की अपील की है। इटली की कैबिनेट ने वेनिस में बाढ़ के हालात पर चिंता जताते हुए शहर में आपातकाल की घोषणा कर दी है। इटली में प्रधानमंत्री गिसपे कॉन्टे ने कहा कि उन्होंने आपातकाल की पहली फंडिंग के तौर पर 2.2 करोड़ डॉलर आवंटित कर दिए हैं। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दाश का नमस्कार। आधे घंटे का ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। ब्राजील में हो रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती रात भारत के लिए रवाना हुए। इस दौरान बुधवार को उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। ये मुलाकात खास मानी जा रही है क्योंकि दोनों देश इससे पहले आसियान देशों के प्रस्तावित RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप को लेकर चर्चा में रहे हैं। इसी महीने बैंकॉक में एक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत RCEP का हिस्सा नहीं बनेगा। भारत के लिए RCEP क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में जानें। उससे पहले सुनते हैं बीबीसी संवाददाता नवीन नेगी से RCEP के बारे में।
आसियान देशों के बीच साल 2013 में RCEP व्यापार समझौते को लेकर चर्चा शुरू हुई थी। इस समझौते में 10 पूर्वी एशियाई देशों समेत चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, न्यूजीलैंड और भारत के शामिल होने की बात कही जा रही थी। 2019 में इस समझौते पर हस्ताक्षर होने वाले थे, लेकिन उससे पहले भारत ने इससे बाहर जाने की घोषणा कर दी। हालांकि दूसरे देशों का कहना है कि वो साल 2020 तक इसे अमली जामा पहनाने की पूरी कोशिश करेंगे और भारत चाहे तो भविष्य में इसका हिस्सा बन सकता है। RCEP एक फ्री ट्रेड डील यानी मुक्त व्यापार समझौता है, जिसके लिए चर्चा फिलहाल चीन की अध्यक्षता में चल रही है। इस समझौते का उद्देश्य सदस्य देशों के लिए एक दूसरे के साथ व्यापार करना आसान बनाना और सदस्य देशों के आयात निर्यात पर लगने वाले टैक्स को कम करना या फिर खत्म करना है। साल 2017 में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एशियाई देशों के साथ हुए ट्रांस पैसिफिक समझौते यानी TPP से बाहर निकलने का फैसला किया था। उनका कहना था कि जब दूसरे एशियाई देश हमारे देश की वस्तुओं पर अधिक टैक्स लगाते हैं तो हम दूसरों की वस्तुओं पर कम टैक्स क्यों लगाएं? माना जा रहा है कि चीन और अमरीका के बीच जारी व्यापार युद्ध और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास से जुड़े समझौतों में पश्चिमी देशों के अधिक दखल के कारण RCEP जैसे क्षेत्रीय समझौतों की जरूरत बढ़ गई है जिसके केंद्र में एशियाई देश हों।
RCEP क्या है, जानकारी दे रहे थे नवीन नेगी। RCEP में भारत के शामिल न होने के फायदे और नुकसान पर भारत में बीते सप्ताह से लगातार चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां अर्थशास्त्री इसे छोटे उद्योगों और किसानों के लिए खतरनाक मान रहे हैं, वहीं नीति आयोग के पूर्व वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया के अनुसार भारत इससे बाहर रहा तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में पैर जमाना नहीं चाहेगी। भारत और भारत के पड़ोसी चीन के लिए RCEP क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों भारत की ना के बाद भी भारत के लिए इसके दरवाजे खुले रखे जा रहे हैं, सुनिए बीबीसी संवाददाता कमलेश मठेनी की रिपोर्ट।
रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप भारत में तब से चर्चा के केंद्र में है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने थाईलैंड गए थे। भारत सरकार के उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने राय दी थी कि भारत को RCEP में शामिल हो जाना चाहिए, लेकिन अंत में भारत ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया। भारत का कहना था कि समझौते की शर्तें अनुकूल ना होने के कारण राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है। भारत में विशेषज्ञ इसे लेकर दो तरह की बातें कह रहे हैं। कई अर्थशास्त्री इसे निर्माण और कृषि क्षेत्र के लिए बेहद नुकसानदायक मानते हैं। इसमें सबसे ज्यादा चिंताएं चीन को लेकर हैं। पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन कहते हैं,
गवर्नमेंट के थिंक टैंक ने, नीति आयोग ने कोई पेपर इस बारे में जारी नहीं किया और 3 थिंक टैंक को गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट लिखने के लिए कहा था, इक्रियर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड और IIM बैंगलोर, उनकी रिपोर्ट भी जारी नहीं की गई। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया की इंडस्ट्री चाइना से कॉम्पिटिशन करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो रेगुलेटरी रेजीम है वो इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि इंडस्ट्री इसके बारे में सोच ही नहीं पाती है कि हमें कॉम्पीट करना है बाहर। वो पहले तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और यहाँ के रेगुलेटरी अथॉरिटीज से लड़ती रहती है। तो पहले हमें अपने उद्योग को और कृषि को तैयार करना होगा, तब हम कंपटीशन के लिए खोलेंगे तो कंपीट कर पाएंगे,
पूर्व कृषि सचिव सिराज हुसैन। लेकिन अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला इसका दूसरा पक्ष सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि RCEP भारत की कंपनियों के लिए दूसरे देशों के बाजार खोलेगा।
यदि संपूर्ण पूर्वी एशिया जिसमें कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चीन और बाकी सब देश सम्मिलित हैं और आसियान सब सम्मिलित हैं, और यदि इनके बीच में फ्री ट्रेड या मुक्त व्यापार होता है और भारत इससे बाहर है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि भारत जो माल इन देशों को निर्यात करेगा उस पर इन देशों के आयातकों को इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि यदि हम आरसीईपी के सदस्य हो जाते हैं तो हमारे जो उद्यमी हैं ये अपस्केल कर सकते हैं। अब इसमें प्रश्न ये है कि इसे जुड़ने से हमारे उद्यमियों को ज्यादा फायदा होगा या नुकसान। तो यहाँ हम एक उदाहरण एशियान का ले सकते हैं। एशियान पहले इसमें चीन सम्मिलित नहीं था। एशियान देश चीन को अधिक निर्यात करते थे, $53 बिलियन प्रति वर्ष का निर्यात अधिक करते थे और आयात कम करते थे। और इसके बाद चीन एशियान से जुड़ गया। 5-7 साल के अंतर्गत व्यापार का संतुलन पलट गया। आज चीन इन देशों को $55 अरब का माल अधिक निर्यात कर रहा है और आयात कम कर रहा है। तो यदि हम यह माने कि भारत के ऊपर भी ऐसा ही प्रभाव होगा तो मैं समझता हूँ कि हमको भी आरसीपी से जुड़ने से नुकसान होगा।
लेकिन ये मसला इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्या इसके फायदे भी उतने अधिक हैं जितना इसके नुकसान पर चर्चा है? इस पर भरत झुनझुनवाला का कहना है कि ये एक वैचारिक मसला ज्यादा है बजाय के आर्थिक मसले के। अर्थशास्त्री भरत झुनझुनवाला।
एक आइडियोलॉजिकल वॉर है बड़ी कंपनियों और छोटी कंपनियों के बीच में। आरसीईपी के माध्यम से या फ्री ट्रेड के माध्यम से जो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको लाभ होता है क्योंकि वे अपना माल पूरे दुनिया में बेच सकते हैं और छोटे उद्यमी इसमें दबते हैं।
आरसीईपी 16 देशों के बीच एक कारोबारी समझौता है जिसके तहत सदस्य देश आयात और निर्यात में टैरिफ कम करेंगे या पूरी तरह से खत्म कर देंगे। बिना कोई शुल्क वाले कारोबार को बढ़ावा दिया जाएगा। कमलेश मठेनी, BBC दिल्ली।
आरसीईपी में भारत के शामिल होने को लेकर जानकारों की राय बंटी हुई है। रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी। आज बिरसा मुंडा की जयंती है जिन्हें धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है और आज झारखंड राज्य का स्थापना दिवस भी है। साल 2000 में आज ही के दिन नए झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तब कहा गया था कि आदिवासियों के कल्याण के लिए नए राज्य का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन आदिवासियों का ये कहना है कि 19 साल के बाद भी उनके मुद्दे वही हैं जहाँ पहले थे। ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव उनके लिए अपनी आवाज उठाने का बड़ा मौका लेकर आया है। आखिर क्या हैं उनके मुद्दे और झारखंड के आदिवासियों को आगे की सरकार से क्या उम्मीदें हैं? सुनिए रांची से हमारे सहयोगी रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
जो आदिवासी राज है इसमें गैर आदिवासी मुख्यमंत्री को बैठा दिया। यहाँ पर जिस तरह का स्थानीय नीति होना चाहिए उसका उल्टा बना। भूमि अधिग्रहण बिल यहाँ के आदिवासियों के लिए एकदम खतरा है उसको लाया। जल जंगल जमीन के रक्षा के लिए जो CNT एक्ट कानून बना है उसमें संशोधन करने का प्रयास किया। वन अधिकार कानून को खत्म करने का प्रयास किया।
यह आवाज सोमा मुंडा की थी। वे खूंटी जिले में रहते हैं। उनका मानना है कि मौजूदा सरकार ने आदिवासियों के खिलाफ काम किया है, इसलिए भाजपा को आदिवासी वोटरों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। क्या सच में ऐसा है? जाने माने कवि और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित सिमडेगा के अनुज लोगून से मैंने यही सवाल पूछा, तो उन्होंने कहा कि न केवल भाजपा बल्कि दूसरी राजनीतिक पार्टियों ने भी आदिवासियों के अधिकारों की बात उठाने में कुताही बरती है।
जिसे बिरसा मुंडा ने दिक्कू कहा, वो जो दिक्कू जो प्रवृत्ति है वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में इनहेरेंट है, वो अनुवांशिक रूप से है। जो देश संवेदनाओं वाला आदिवासी महसूस कर रहा है कि उस मेनस्ट्रीम में जाकर उसका हासिल कुछ नहीं, फाइनली जमीन हड़पी जाएगी, ठीक है, जो संविधान के अधिकार है उद्धवस्त किए जाएंगे। मुझे ये लगता है कि आदिवासियों को अपने शुभ शेड्यूल
खूंटी की ही सोशल एक्टिविस्ट लक्ष्मी बाकला मानती हैं कि जल जंगल और जमीन की रक्षा का भरोसा दिलाने वाली पार्टी को ही आदिवासियों का समर्थन हासिल होगा।
बहुत जन आक्रोश और इस चीज को बचाने के लिए जो उनके पक्ष में हो तो उनके पक्ष में फैसला सुनाने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ इनका रुझान ज्यादा जाता है।
इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी आदिवासियों की स्वाभाविक प्रतिनिधि पार्टी है।
स्वाभाविक प्रतिनिधि समझना हम लोगों के लिए पहला दायित्व है। विकासशील समाज में बाकी बुनियादी चीजें जो चाहिए वो चीजों का भी हम विरोधी नहीं है। हम लोग कहते हैं कि विकास आवश्यक है, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास का शर्त आपका विनाश नहीं हो सकता। फीस के शेड्यूल में और संविधान के आर्टिकल 14 में ये तो उनकी संवैधानिक स्टेटस को रक्षा कवच के रूप में दिया गया। ग्राम सभा, पेशा एक्ट, ई पेशा एक्ट, रक्षा करूंगा। लेकिन पीपीसा अभी तक अक्षरशा लागू करना तो छोड़ रही है, एक नोटिफिकेशन छोड़ के उस पर और कोई काम नहीं किया।
वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता केन त्रिपाठी ने आरोप लगाया कि भाजपा की रघुवरदास सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए पहले से चली आ रही कई योजनाओं को बंद कर दिया, इस कारण आदिवासी वोटर उनसे नाराज है।
भारतीय जनता पार्टी की जो अभी सरकार चल रही है, यह सरकार आदिवासियों की और दलितों की विरोधी सरकार है।
हालांकि भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीनदयाल वर्णवाल इन आरोपों को खारिज करते हैं। उन्होंने दावा किया कि रघुवरदास की सरकार ने आदिवासियों के कल्याण के लिए कई उल्लेखनीय काम किए हैं,
जैसे आदिवासी विकास समिति का गठन किया गया, सिविल सेवा की तैयारी के लिए उनके बच्चों के लिए 1,00,000 रुपए तक का अनुदान दिया गया है, जो समाज है उसके लिए 35 किलो का अनाज घर तक पहुंचाने का कार्य किया गया है।
झारखंड के आदिवासी समाज की चिंता योजनाओं के क्रियान्वयन की बजाय अपने अधिकारों के संरक्षण को लेकर है। जो नेता या पार्टी उन्हें इसका भरोसा दिला पाएगी, आदिवासियों का समर्थन हासिल करने में उसे उतनी ही सहूलियत होगी। रवि प्रकाश, BBC रांची।
बीते करीब 3 सप्ताह से महाराष्ट्र लगातार चर्चा में है। यहाँ विधानसभा चुनाव तो संपन्न हुए, लेकिन अब तक कोई सरकार नहीं बनी और फिर यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। लेकिन महाराष्ट्र केवल इस कारण से खबरों में नहीं है, ये अपने किसानों के कारण भी खबरों में है, जो बिन मौसम बरसात की मार झेल रहे हैं। बेमौसम बारिश की वजह से फसलें खराब हो गई हैं और किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गुरुवार को महाराष्ट्र विधानसभा के बाहर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया और राज्यपाल से आर्थिक मदद की गुहार लगाई। हमारी सहयोगी कमलेश मठेनी ने BBC मराठी के संवाददाता रोहन टिल्लू से संपर्क किया और उनसे किसानों की परेशानियों के बारे में पूछा।
देखिए, इस साल महाराष्ट्र में बारिश का सीजन खत्म होने के बाद भी भारी बारिश हुई और इसके वजह से जो खरीफ क्रॉप है लगभग 65% बह गया है। उसमें सोयाबीन है, उसमें जवार है, मक्का है, कॉटन कहते हैं वो है, ये सब क्रॉप है, वो सब बह गया है और किसानों को बुरी तरह से नुकसान हुआ है। और ये नुकसान की भरपाई जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए बच्चू कड़ू ने ये प्रोटेस्ट मार्च निकाला था आज। बच्चू कड़ू एक विधायक है, उनका प्रहार जनशक्ति पक्ष करके उनका एक पार्टी है उनकी, जो अभी अभी फॉर्म हुई है, और उनके 2 MLA चुन के आए हैं इस इलेक्शन में, फार्मर्स के मुद्दों को उठा के आंदोलन करते आए हैं।
बारिश के वास्ते हमारे नासिक जिले में बहुत नुकसान हो गए खेत का, और ये प्याज और अंगूर का।
तो हम भी आज ये प्रतिमा लेके राज्यपाल की तरफ ये मांग कर रहे हैं कि ये किसानों पे जो संकट आया है, जो आसमानी जो संकट आया है ना, तो राज्यपाल की जिम्मेदारी है कि सबको संभालना चाहिए।
और किन इलाकों से ज्यादातर किसान आए हैं?
महाराष्ट्र के लगभग सभी इलाकों से आए हैं, कोंकण से आए हैं, जालना मराठवाड़ा से आए हैं, औरंगाबाद से आए हैं, मतलब जो मराठवाड़ा का ही पार्ट है और पीड़ है, यहाँ से आए हैं, विदर्भ से आए हैं, पश्चिम महाराष्ट्र से आए हैं, जो सातारा और कोल्हापुर ये जो है वहाँ पे भी बहुत बारिश हुई थी इस साल और किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, तो वो रीजन से भी आए हैं।
किसानों की क्या मांगे हैं?
उनकी मांग है कि जो नुकसान हुआ है उनका, उसके अगेंस्ट उनको पर हेक्टर 25,000 से 30,000 रुपए की मदद मिले, और जो कैश क्रॉप लेते हैं उनकी डिमांड है कि पर हेक्टर उनको 30,000 से 35,000 की मदद मिले, ये उनकी मेन डिमांड है। और दूसरी डिमांड उनकी ये है कि जो उन्होंने इंश्योरेंस किया था, क्रॉप इंश्योरेंस लिया था, उसकी अमाउंट उन्हें जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि अभी उनका ये कहना है कि वो अमाउंट मिलने में जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनकी तरफ से देरी हो रही है, सब उनके पंचनामा जिसे बोलते हैं वो सब हो गया है, वो रिपोर्ट तैयार है सब, लेकिन फिर भी अभी गवर्नमेंट और ये कंपनीज पैसा रिलीज नहीं कर रही है, वो जल्दी से जल्दी किया जाए।
क्या राष्ट्रपति शासन लगने से सरकारी कामकाज पर कोई असर पड़ रहा है और कुछ दिक्कतें आ रही हैं?
किसानों को दिक्कत जरूर आ रही है, क्योंकि ये बात है कि गवर्नर जो हेड ऑफ द स्टेट, लेकिन वो पूरी मतलब जो स्टेट की रूलिंग होती है उस पे मॉनिटर नहीं करते हैं, जब नॉर्मल CM और कैबिनेट होती है तब, लेकिन अभी मुख्यमंत्री नहीं है और कैबिनेट भी नहीं है, तो ये गवर्नर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में थोड़ा वक्त लग रहा है और इसकी वजह से उनकी दिक्कतें बढ़ रही है। जो डिसीजन कैबिनेट मीटिंग में फट से हो जाते हैं वो अभी नहीं हो रहे हैं। किसानों की तो ये राय है कि अगर 5 दिनों के अंदर कुछ फैसला नहीं लिया गया तो वो फिर से एक बार राजभवन पे मार्च करेंगे, और इस बार वो किसी को नोटिस नहीं देंगे और सीधा जाके मार्च करेंगे।
महाराष्ट्र विधानसभा के सामने किसानों का विरोध प्रदर्शन, जानकारी दे रहे थे रोहन टिल्लू। और अब आगे बढ़ें, उससे पहले देखते हैं कि दिल्ली से छपने वाले अखबारों में आज क्या है। स्टूडियो में अखबारों के साथ है नवीन नेगी। नवीन, दिल्ली में बाहर प्रदूषण और ठंड, अखबारों का क्या हाल है?
अखबारों में मानसी जी बिल्कुल प्रदूषण का जो हाल है अखबारों में बयां हो रहा है। दैनिक भास्कर मेरे सामने रखा है और ऐसा लगता है कि दैनिक भास्कर में भी जो धूल भरी आंधी है जो दिल्ली की हवाओं में फैली हुई है, स्मॉग, वो उसके मास्ट हेड पे पहुंच चुका है। यानी जहाँ पे दैनिक भास्कर बड़ा बड़ा लिखा है उसको बिल्कुल धुंधला बना दिया गया है और दिखाया है अखबार ने अपने तरीके से कि किस तरीके से दिल्ली में जो लोग हैं वो विवश हैं रहने के लिए। उन्होंने अपनी हेडिंग में लिखा है बाल दिवस, जो कि कल था, और दिवस को उन्होंने काट के लिख दिया विवश, यानी बाल विवश, बच्चे जो हैं विवश हैं ऐसी हवा को सांस लेने के लिए।
प्रदूषण के कारण बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं।
जी जी। इसके अलावा पिछले काफ़ी दिनों से लगातार सुप्रीम कोर्ट जो है अखबारों की सुर्खियों में छाया हुआ है, बड़े बड़े फैसले आ रहे हैं। अयोध्या पे फैसला आया, उसके बाद जो है कल रफेल डील से जुड़े हुए जो आरोप थे उस पर जो तमाम पुनर्विचार याचिकाएं थी उस पर कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि तमाम पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया, तो अखबारों ने उसको अपनी सुर्खी बनाया है। नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि रफेल डील पर आरोप फेल। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि रफाल खरीद में गड़बड़ी के ठोस सबूत नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो ये तमाम खबरें। इंडियन एक्सप्रेस ने जो है महाराष्ट्र में सरकार गठन से जुड़ी हुई एक अहम खबर को प्रकाशित किया है जिसमें बताया गया है कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने कल बैठक की आपस में और उन्होंने जो है एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाने के लिए चर्चा की। अखबार लिखता है कि इस बैठक में जो है शायद कांग्रेस और एनसीपी ने, सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन्होंने शिवसेना से कहा है कि वो जो 5% शिक्षा में मुसलमानों को आरक्षण देने की बात है उसमें शिवसेना जो है वो इस बात को माने, ये एनसीपी और कांग्रेस ने शिवसेना के सामने शर्त रखी है एक तरीके से। इसके अलावा एक और खबर है जो हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित और बड़ी महत्वपूर्ण खबर है कि देश की दो प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां एयरटेल और वोडाफोन को सितंबर की तिमाही में जो है रिकॉर्ड नुकसान हुआ है। ये जो है AGR की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि वोडाफोन आइडिया जो कंपनी है इसको इस तिमाही में 50,992 करोड़ का नुकसान हुआ है जबकि पिछले साल उसे 4,874 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा था। वहीं एयरटेल को पिछले 14 सालों में अब तक का सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। एयरटेल को 23,045 करोड़ का नुकसान हुआ है जबकि पिछले साल उसे 118 करोड़ का फायदा हुआ था। बता दें कि ये नुकसान इसलिए हुआ है, अखबार ये लिखता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से नुकसान हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन सहित अन्य टेलीकॉम कंपनियों को आदेश दिया था कि वे सरकार के 1.4 लाख करोड़ बकाए जो रुपए हैं वो वापस करें।
जी, अखबारों की विस्तृत समीक्षा के लिए धन्यवाद नवीन नेगी। 31 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया जिसके बाद औपचारिक रूप से देश का एक नक्शा भी जारी किया गया। इस नक्शे में उत्तराखंड और नेपाल के बीच मौजूद कालापानी और लिपुलेख इलाकों को भारत के भीतर दिखाया गया था। नेपाल ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि नेपाल सरकार इस पर स्पष्ट है कि कालापानी नेपाल का क्षेत्र है, लेकिन भारत का कहना था कि ये इलाका भारत का है। BBC नेपाली सेवा की सहयोगी मंजू कल्याल ने विवादित कालापानी इलाके की यात्रा की और वहां के लोगों से इस संबंध में बातचीत की। BBC संवाददाता कमलेश मठेनी ने मंजू कल्याल से बात कर ये जानने की कोशिश की कि कालापानी में स्थितियां कैसी हैं और वहां के लोग इस विवाद के बारे में क्या सोचते हैं।
नेपाल की साइड में लोग रहते हैं, उनको भी विवाद के बारे में पहले से लेकर अभी तक पूरी जानकारी है और होने को तो वो नेपाल साइड में है करके वहाँ के लोग भी बोलते हैं। वो भारत और चाइना के बीच में लड़ाई होते टाइम वो जमीन भारत के सैनिकों ने हमें यूज करने के लिए दे दो करके वो उस हिसाब से वहाँ रहे, फिर बाद में उसी दौरान से वो लोग वहाँ रह के फिर और भी अपना वो मजबूत बना के और भवन वगैरह बना के वो लोग मतलब भारत के सैनिक लोग वहाँ रहे। फिर बाद में ऐसे टाइम बीतते जाते टाइम फिर बाद में उन्होंने बोला कि अब ये हमारा भारत का जमीन है और हमारा है करके उन लोगों ने ऐसे अपना हक जमाना स्टार्ट किया। तब अब नेपाल के लोगों ने उतना ऑब्जेक्शन करते टाइम भी उन लोगों के साथ अब उनकी मनमानी ज्यादा चली, ऐसी टाइप के पुराने लोग भी बोलते हैं वहाँ के।
तो कैसा इलाका है कालापानी?
जैसे कि वहाँ नेपाल और भारत का वो सीमाना है और बीच में से एक महाकाली नदी बहती है, वो उसका मुख्य मुहान है। क्योंकि जो अभी भारत का एरिया है करके बोल रहे हैं, जो कालापानी विवादित है, उस जगह में अभी 3 गांव है वहाँ से।
वहाँ के लोग क्या मानते हैं, वो अपने आप को किस देश का हिस्सा मानते हैं या किस देश की तरफ झुकाव रखते हैं?
पहले के जो बुजुर्ग थे उनके पास नेपाली नागरिकता भी था, लेकिन जैसे बाद में वो इंडिया का एरिया है करके बोलने लगे, फिर बाद में वहाँ के लोगों ने फिर बाद में भारतीय नागरिकता भी ले लिया, फिर बाद में जैसे भारत सरकार से उनको जो सुविधाएं वगैरह मिलते हैं वो सारी सुविधा भी वो ले रहे हैं, और वो अभी ऐसा कि हम नेपाल के है करके तो नहीं बोलते, उनका चुकाव अभी इंडिया की तरफ ही है।
तो वहाँ का जो प्रशासन है, पूरी व्यवस्था है, वो सब कौन देखता है, मतलब नेपाल सरकार की तरफ से होता है कि भारत सरकार की तरफ से?
जो जगह अभी काला पानी जो भारत का है करके बताया जा रहा है, उस जगह में तो सारी काम कार्यवाही भारतीय प्रशासन ही देखती है। उसके इधर साइड को जो नेपाल का गांव छांगरो और पिंकर करके जो है, उस गांव में नेपाल की प्रशासन ही हर काम कार्यवाही देखती है।
नेपाल और भारत के बीच काला पानी को लेकर विवाद, मंजू कल्याल से बात कर रही थी कमलेश मठेनी। भारत के जाने माने गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन कल सुबह पटना में हो गया। वो 72 साल के थे और बीते कुछ वक्त से मानसिक बीमारी से परेशान रहे। गणित के क्षेत्र में देश दुनिया में हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह का जीवन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। नासा में काम करने से लेकर गुमनाम होने तक उनकी जीवन यात्रा काफी दिलचस्प है। उनके जीवन पर सुनिए पटना से हमारे सहयोगी नीरज सहाय की रिपोर्ट।
गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, जिनकी गणित संबंधी विलक्षण प्रतिभा ने भारत को चमत्कृत किया था, उनका पार्थिव शरीर पटना के पीएमसीएच के वार्ड के बाहर लगभग 1.5 घंटे तक पड़ा रहा और उन्हें एम्बुलेंस तक मयसर नहीं हुई। वशिष्ठ नारायण सिंह के पार्थिव शरीर के समीप खड़े उनके छोटे भाई अयोध्या प्रसाद सिंह बताते हैं कि सुबह 7 बजे उनका सांस फूलने लगा और वे लोग उन्हें पीएमसीएच ले गए।
सुबह की बात है, मतलब रात में सांस फूल रहा था तो साथ में ही थे, ठीक थे, लेकिन सुबह में थोड़ा ज्यादा सांस होने लगा, लेकर के पीएमसीएच में गए। फिर वो क्या है, ना पूछा जाए तो ही अच्छा है, रहने दीजिए अब उस सब बात को।
आर्यभट्ट की धरती पर 2 अप्रैल 1942 को वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म भोजपुर जिला के बसंतपुर गाँव में हुआ था। इनके पिता लाल बहादुर सिंह पुलिस बल में सिपाही थे। 5 भाई बहन वाले बेहद साधारण परिवार से आने वाले वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी गणित प्रतिभा के बल पर भारतीय तकनीकी संस्थान कानपुर में लेक्चरर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में प्रोफेसर और अमरीकी शोध संस्थान नासा में सलाहकार रहे। इनकी स्कूली पढ़ाई प्रसिद्ध नेतरहाट विद्यालय में हुई थी। इनके अभिन्न मित्र और सहपाठी रहे प्रोफेसर नरेंद्र नारायण पांडे और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार पुराने दिनों को याद करते हैं और विस्तार से बताते हैं।
मैं से बहुत आगे थे, उसके बाद इनका दाखिला मेरे साथ ही हुआ था। हम 3 आदमी आए थे साइंस कॉलेज में, वशिष्ठ, मैं और मनोज। वशिष्ठ को स्पेशल परमिशन मिला बीएससी ऑनर्स देने के लिए, जब हम लोग पार्ट वन का दे रहे थे, यानी सेकंड ईयर का आई एस सेकंड। तो संजोग से प्रोफेसर केली आए हुए थे कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से, उन्होंने उसको मिलवाया, इनका दाखिला वहां पर हो गया कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, बर्कले में है। उसके बाद वहां से उन्होंने एमएससी किया, पीएचडी हो गई, वहां से यहाँ आए, स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में रहे, IIT कानपुर में रहे। वो रूप हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था। जब हम लोग निकलने लगे नेत्रहाट से 63 में, तो हम लोगों ने एक नाटक किया था अपनी तरफ से, रामकुमार वर्मा के रूप की बीमारी, और उसमें ये इन्होंने अभिनय किया था। यानी अंतिम क्षणों में मैं, ये एक सुबोध थे, विजय दुबे थे, बहुत सारे लोगों ने अभिनय किया इनके साथ नाटक में। तो ही वॉज अ गुड एक्टर और पूरी तरह से ये समर्पित व्यक्ति मैथ्स के लिए। ये तो विरले होते हैं इस तरह के व्यक्ति, हम क्या कहें, हमारा दोस्त चला गया, अब इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता।
उनके नजदीकी लोग मानते हैं कि उनकी विवाह ही उनके मानसिक बीमारी का कारण बना। इनकी शादी सारण जिला में 1973 में हुई थी, लेकिन यह बंधन 1975 में टूट गया। वर्ष 1989 में आरा से पुणे जाने के क्रम में वे ट्रेन से कहीं उतर गए और 4 साल बाद छपरा में मिले थे। इतना बड़ा गणितज्ञ एक मानसिक बीमारी के चलते अपनी जीवन की आधी उम्र ही चैतन्य अवस्था में जी पाया। उनका निधन भारत और गणित के लिए एक बड़ा नुकसान है। नीरज सहाय, BBC, पटना।
और कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर नवीन नेगी से।
BBC समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने सम्मेलन को बहुत कामयाब बताया। अमेरिका के लॉस एंजल्स स्थित एक स्कूल में गोलीबारी की घटना हुई। इस शूटिंग में 2 छात्रों के मारे जाने की खबर है। बोलीविया की अंतरिम सरकार ने कहा है कि वह पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस की पार्टी के नेताओं के साथ बातचीत के लिए तैयार है। BBC समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला अजीत सारथी ने। अगला प्रसारण दिन भर आज शाम 7:30 बजे। तब तक देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए bbchindi.com के साथ। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।